ओम ज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानांगनेश्लाकाय चक्षुरुन्मीलितं येनस्मै
नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सर्वदान्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत कदादर्श वासुदेव और भक्तों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने चर्चा की थी रामचंद्र भगवान किस तरह से युद्धारंभ किया और पहले दिन रावण को काफी क्षति हुई और उसके बहुत सारे योद्धा समाप्त हो गए। लक्ष्मण पहले रामचंद्र भी एक बार पराजित हुए थे, वो ऐसा नागपाश फेंका था इंद्रजीत ने, तो गरुड़ ने आकर के भगवान की सेवा की थी। दूसरी बार जब इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति नाम का अस्त्र डाला था तो उसका औषधि तो था नहीं कहीं पर सिवाय कि हिमालय में, तो हनुमान को ये कार्य दिया गया। तो कल हमने सुना था कि किस तरह से हनुमान गए हिमालय में और ये औषधि लाने के लिए गए थे। सुषेण वैद्य ने बताया था कि औषधि कैसी होती है, तो सुषेण वैद्य ने कहा था कि ये पुष्प संजीवनी जो होंगे उनका वो स्पेशल प्रकाश उसमें से निकलता होगा। तो हनुमान जब वहां पर गए तो देखा उन्होंने प्रकाश निकलने वाली औषधि कहाँ पर है, तो वहां पर कई ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये यहाँ पर कोई संकट आने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि देवताओं के ये जुरिस्डिक्शन में आता है ये पर्टिकुलर जगह, आज भी है। अगर आप कोई भाग्यशाली वहां पर जाता है वो पर्वत आज भी है, जा सकते हैं उधर, सब प्रकार की संजीवनी बूटी उधर है, लेकिन ये सब दिव्य औषधियां होने के कारण मनुष्य के हाथ में लगती नहीं है। ऐसी दिव्य औषधि बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में कुछ दो या तीन प्रकार की दिव्य औषधियां हैं और वो औषधि अभी भी है और वो आज किसी को नहीं पता कि औषधि कहाँ पर है, लेकिन उस औषधि से कैसा भी कोई भी बीमार व्यक्ति हो वो ठीक हो सकता है। वो सब जगन्नाथपुरी में अभी भी है। सो इस तरह से हिमालय में वहां पर औषधियां थी, तो वहां के जो ऋषिगण थे उन लोगों ने सोचा कि ये औषधियां तो बड़ी कीमती है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो पुष्प संजीवनी का एक पत्ता अगर कोई खा ले तो 5 साल तक उसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी ना निंद्रा आएगी, अर्थात इन सब जो शरीर की आवश्यकताएं होती है उससे ऊपर हो जाता है, अर्थात वो उसको सता नहीं सकते, वो इतना स्वस्थ हो जाता है। तो बड़ी मेहनत लगती है उसके लिए, इसलिए किसी को मिलती नहीं। तो इन ऋषियों ने अपनी शक्ति से ऐसा प्रयोग किया कि सारी बहुत सारे और भी पत्ते थे पौधे थे, इसमें से पुष्प संजीवनी तो एक ही थी, लेकिन ऋषियों ने ऐसा चमत्कार किया कि सारी औषधियां चमकने लगी। तो हनुमान के पास तो एक ही डिस्क्रिप्शन था कि चमकती होगी और इसको लेके आना है। तो सब जब सारी चमक रही थी तो यहाँ हनुमान ने सोचा कि एक पौधा कहाँ ढूंढूंगा, सारा का सारा पर्वत ही उठा लेता हूँ। तो ये ऋषि मुनि सब चौंक गए, बोले हमने तो सोचा था कि ये कंफ्यूज होकर वापस चला जाएगा ये वानर, लेकिन ये तो कोई साधारण वानर नहीं है, ये तो पूरा का पर्वत उठा रहा है। जब उन्होंने पता रोकने का प्रयास किया तो हनुमान जी ने कहा कि मैं ये किसके लिए ले जा रहा हूँ, लक्ष्मण जी के लिए ले जाओ, भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए। तब फिर वो औषधि वहां से गई बाहर लक्ष्मण के पास। ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मण के बाद उस औषधि का जो प्रभाव है, क्योंकि वो औषधि के आसपास में ही बहुत सारे ऐसे जो बीमार हो ठीक हो जाते हैं केवल उसके आसपास रहने से ही, उसको छूने की तो बात ही छोड़ दो। तो जामवन जी ने यहाँ पर सारे असुर सैनिक जो थे राक्षस जाति के जो मरे पड़े थे उन सबको उठा उठा के समुद्र में डलवा दिया। उनको पता था कि इसका प्रभाव इतना प्रबल है, तो सारे केवल वानर सैनिक जो मरे थे उस दिन उन लोग को रखा था, बाकी राक्षस सैनिक सबको समुद्र में फेंक दिया और सबके ऊपर एक शिला डाल दिया ताकि वो ऊपर ना आए। और जैसे ही वहाँ संजीवनी बूटी अभी तो जमीन पे लैंड भी नहीं हुई थी और सब लोग उसका प्रभाव शुरू हो गया। जब लक्ष्मण ठीक हुए उसके बाद बाकी कुछ वानर भी इससे ठीक हुए। तो ये सब घटनाएं हुई थी। उसके बाद इंद्रजीत को लक्ष्मण ने हरा दिया। इंद्रजीत के पास भी ऐसा वरदान था कि उसको तभी मारा जा सकता है कि जब उसको यज्ञ में कोई विघ्न डाले। तो ऐसा उसने प्रयास किया था कि यज्ञ ऐसी जगह पे करेगा कि कोई जानेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा कि कहाँ यज्ञ कर रहे हैं। तो विघ्न डालने की तो बात ही छोड़ दो। और सेना होती थी आगे, वो सेना को मार के जाना बड़ा असंभव था। सो विभीषण को इसका मार्ग पता था और विभीषण ने इसका तोड़ निकाल करके इंद्रजीत को खत्म करने का पूरा उपाय लक्ष्मण और रामचंद्र दोनों को बताया। और लक्ष्मण ने सारी चीजों को फॉलो करके इंद्रजीत को समाप्त कर दिया। कल हमने चर्चा की थी कि इंद्रजीत की मृत्यु से घबरा करके कुंभकर्ण का भी मृत्यु हो गया था, क्योंकि कुंभकर्ण आया था युद्ध करने के लिए, भगवान ने उसको भी खत्म कर दिया था। तो पूरी तरह से परास्त होने के पश्चात रावण ने सोचा कि अब मैं जाता हूँ हेल्प लेने के लिए, मैं ही रावण की हेल्प लेने के लिए, जो कि कुछ और स्थानों में इस घटना का वर्णन आता है और ग्रंथ में कि मही रावण ऐसा बलवान था कि उसको मारने के लिए तीन चीज एक साथ होगी तभी वो मरेगा। जैसे कल हमने बताया था, एक उसने अपने आधे प्राण रखे थे एक हीरे में जो कि बड़ा हीरा था, और उस दूसरे आधे प्राण रखे थे उसने हिमालय के किसी गुफा के अंदर पांच दिए में डिवाइड करके, और उसको तभी मार सकते हैं कोई कि जब ये तीन चीज एक साथ हो, डायमंड एक साथ टूटे, साथ साथ में पांच दिए भी एक साथ बुझ जाए, एक साथ बुझने चाहिए, और उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा उस मही रावण के छाती में बाण लगे। तो ये तीन चीज जब एक साथ होगी तब मही रावण का वध होगा। बड़ा मुश्किल कि ये तो इस प्रकार के वरदान तो असीमित वरदान होते हैं, तो इसको ये तो बिल्कुल अमरत्व जैसा है। जी हाँ, इस प्रकार के वरदान बड़े दुर्लभ होते हैं, किसी को मिलते नहीं है, बड़ी शक्ति से मिलते हैं, लेकिन भगवान के पास सबका उपाय होता है। जैसे हिरण्यकश्यप का वरदान था, उसका उपाय भी था। तो इस तरह से रामचंद्र भगवान मही रावण का वध करने वाले हैं, लेकिन उसमें हनुमान जी की बहुत बड़ी सहायता थी। हनुमान जी, कल हमने जो चर्चा किया था कि रावण ने जब सहायता मांगी और मही रावण ने प्रॉमिस दिया कि रात को 12 बजे तक मैं राम का वध करूंगा, तो ये कुछ समझ लो कि 8 घंटे के अंदर ये सब कुछ हुआ था। और मही रावण की पत्नी ने तो साफ मना कर दिया कि झगड़े में मत पड़ो, क्योंकि रावण के विषय में तो नारद मुनि ऑलरेडी बोल चुके थे कि रावण का वध रामचंद्र के द्वारा होने वाला है, और मैंने यहाँ तक सुना था कि अगर मही रावण की नगरी में महीपुरी, उस महीपुरी में अगर जब कभी कोई बंदर प्रवेश करेगा तो समझ लेना कि उस दिन मही रावण का अंत हो जाएगा। तो अब वो ये वानर जो है ये जुड़े हुए इस राजकुमार के साथ, तो इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। लेकिन मही रावण नहीं समझे, उसने तो बोला कि नहीं नहीं मैं इतना बलवान हूँ, इतना शक्तिशाली हूँ, मैं तो अवश्य मारूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। तुम लोग क्षत्रिय भावना को नहीं समझते। सो अभी ये बात जो थी कि रावण राम लक्ष्मण को किडनैप करने आएंगे, ये बात किसी भी तरह से रामचंद्र तक पहुंचाने की थी। तो ये अगस्त्य मुनि ने, ऐसा कहा जाता है कि अगस्त्य मुनि ने जाकर के विभीषण को, हनुमान को, सबको आगाह किया, सबको उन्होंने चेतावनी दे दी, उनको बताया कि इस तरह से मही रावण जो है वो किडनैप करने के लिए कभी भी आ सकता है, इसे तो विभीषण, हनुमान, तुम लोग राम लक्ष्मण की सुरक्षा का प्रबंध करो। तो वेल, भगवान की ये लीला थी, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। सो हनुमान जी ने एक ऐसा दुर्ग बनाया, विभीषण ने कहा कि हमें तुरंत सुरक्षा का प्रबंध करना पड़ेगा, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से दुर्ग बनाया। अपनी पूंछ को ऐसे कोयल गोल 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 घुमा करके पूरा विशाल अनंत उनकी पूंछ लंबी बनाई, और विशाल इतना बड़ा दुर्ग बनाया, इतना बड़ा दुर्ग आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसके अंदर सब व्यवस्था, बगीचे, बैठने का व्यवस्था, सब ऐसा सुंदर दुर्ग पूंछ से, इतनी सारी पूंछ का, अनंत पूंछ का इतना बड़ा दुर्ग बन गया उसको, जिसकी दीवार आसमान से ऊपर जाती थी, और पूंछ के अंत में एक जगह पर उन्होंने उसका एंट्रेंस रखा था, उस गुफा का, उस दुर्ग का, और उसका प्रवेश द्वार बिल्कुल अजीब किस्म से था, क्योंकि वो तो पूंछ से था, तो अर्थात हनुमान के शरीर के भीतर जाना पड़े किसी को, तब जाके कोई व्यक्ति दुर्ग तक पहुंच पाए। तो रास्ता ऐसा बनाया था हनुमान जी ने कि कान में से प्रवेश करना पड़े, और कान से प्रवेश करके पिछली का जो मेरु होता है गर्दन के पीछे, वहां से सीधा मार्ग जाता था पूरा मेरु के ऊपर और मेरुदंड, और वहां से सीधा पूंछ में प्रवेश करके जा सकते, इस तरह का रास्ता बनाया था। अब हनुमान के कान से प्रवेश करके जाना पड़ता, ऐसा मार्ग बनाया था हनुमान ने, और राम और लक्ष्मण दोनों को अंदर सुरक्षित करके दो पहरे पर लगे थे हनुमान और विभीषण दोनों, क्योंकि किसी भी समय वही रावण वहां पर आ सकता है, ये उनको पता था। दोनों आगे इधर उधर उधर घूम रहे थे सुरक्षा के लिए। अब मही रावण वहां पर पधारे, उनके साथ चार लोग थे, उनके असिस्टेंट्स, एक का नाम था चतुर, पता नहीं कैसे नाम बताया था लेकिन चतुर, दूसरे का नाम था साध्य, तीसरे का नाम था सर्व प्राण, और चौथे का नाम था दुष्मति। तो ये चार अलग अलग प्रकार के उनके सबसे श्रेष्ठ उनके सैनिक, उनके असिस्टेंट्स वो साथ में लेके आया था, और मही राव ने उन सबको कहा कि हमें जल्दी से राम लक्ष्मण को किडनैप करना है और रात को बलि देना है। तो चतुर ने कहा इतना आसान काम है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खामखा आप लोग इतने परेशान हो, मैं अभी 2 मिनट में जाके पकड़ के लेके आता हूँ उनको, मुझे एक बक्सा दो जिस बक्से में मैं राम लक्ष्मण को पैक करके लेके आ जाऊंगा। तो उनको एक बक्सा दिया गया। अब भाई ये चतुर जो था वो दुर्ग के चारों ओर घूमता रहा देखने के लिए कि यहाँ से एंट्री कहाँ से, लेकिन उसको एंट्री कहीं मिली ही नहीं। और फिर वो घूमता 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 थक गया, लेकिन उसने ऊपर देखा तो ऊपर कितना ऊंचा है, ऐसे ऊपर देखा और ऊपर देखा और ऊपर देखा, देखते देखते वो पूरा लेट गया जमीन पर, लेकिन उसकी आंख से वो देख ही नहीं पाया कि दुर्ग की दीवारें कितनी ऊंची है। तो बाद में वो शर्मिंदा होकर आया, भाई रावण के पास मुझसे तो नहीं होगा ये, बहुत बड़ा है मुझसे नहीं हो पाएगा। तो साध्या तुरंत वहां पर आ गया, हजरत इसको क्या आता है, आप इसको क्यों भेजा, मुझे भेजना चाहिए और मुझे कोई बक्सा बक्सा चाहिए ही नहीं, मैं तो ये राम लक्ष्मण दोनों को हाथ में उठा के ले जाऊंगा। आप देखो भाई ना वीर। तो साध्य गया वहां पर लेने के लिए, वो भी ऐसे घुमा सब जगह देखा कि तो बहुत ऊंचा है। तो उसने सोचा कि मैं ईगल का पक्षी बाज वो बन जाता हूँ, क्योंकि उसकी दृष्टि बहुत दूर तक होती है, आकाश में उड़ सकता है। उसको पता पड़ा कि दीवारें ऊंची है और आसमान में देखना पड़ेगा कि ये लोग कहाँ पर छुपे रहा, तो ऊपर उड़ने लगा वो, ऊपर उड़ने लगा, ऊपर उड़ने लगा। देखा तो कुछ काफी ऊपर स्वर्ग ये तारों तक चले गए, सितारों जो आकाश में है वहां तक चला गया। तो देखा तो वहां पर अभी भी हनुमान की पूंछ तो ऊपर जा रही है, तो दुर्ग अभी भी ऊपर है। तो चंद्र लोग फिर भूर भूअर स्वर महर जनलोक, जनलोक में देखा वहां पर भी उसको दिखाई दिया, सत्यलोक तक पहुंच गया। थकते उड़ता उड़ता थक गया, लेकिन हनुमान का ये दुर्ग खत्म ही नहीं हो रहा है, तो वापिस आ गया। होगा ये हमसे नहीं होगा ये। तो फिर उसने नीचे से ट्राई किया हनुमान की पूंछ से एंट्री लेने के लिए, तो हनुमान को खुजली सी आई कुछ, लेकिन हनुमान ने तुरंत उसको पता नहीं, हनुमान सोचे कि क्या होगा तो दबा दिया उसको और वो उसको खत्म कर दिया। लेकिन नहीं, रावण बोले कि किसी से कुछ नहीं होगा, अब मैं समझ गया कि इसको कैसे पार किया जाए। मही रावण के पास माया शक्ति बहुत ज्यादा थी, उसने क्या किया, उसने अपनी योग शक्ति से अपनी सांस रोक दी और जैसे मृतक प्राय बन गया, मृतक जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और उसने रूप लिया विभीषण का। अब विभीषण इधर से उधर चल रहे और ये विभीषण के पास, विभीषण बोले हनुमान जी को, असली विभीषण बोले कि मैं पीछे चक्कर मार के आता हूं, तुम यहां संभालना रावण ना आ जाए कहीं से। तो वो विभीषण ऐसे गए, थोड़ी देर में तुरंत विभीषण दौड़ते हुए वापिस आए। अब वापिस आके गए, मुझे लग रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है, मुझे देखना पड़ेगा कि राम लक्ष्मण सुरक्षित है कि नहीं, मैं तुम्हारे कान में प्रवेश करता हूं, मुझे जाने दो, मैं अंदर देख के जाता हूँ कि राम लक्ष्मण वहां पर है कि नहीं। तो अब ये तो गए अंदर कान के अंदर, हनुमान का ठीक है जाओ अंदर, और जैसे अंदर गए उसमें मैं असली वाला विभीषण वहां वापिस आए, वो जो आया था वो नकली विभीषण था, और नकली विभीषण जो मही रावण थे घुस गया अंदर, कान पूरा अंदर चला गया, राम लक्ष्मण को तुरंत उसने अपनी योग शक्ति से मूर्छित कर दिया, और मूर्छा करके वो एक क्षण में पूरा किला आकाश मार्ग से सीधा निकल गया, पूरा आकाश मार्ग से। अब असली विभीषण आया कहा कि सब ठीक है, तो हनुमान ने कहा तुम तो अंदर गए थे, तुम यहां से कैसे आए। बोले मैं कहीं अंदर नहीं गया, मैं तो बोल तो गया था कि मैं इधर जा रहा हूं, इधर आ रहा हूं। तो हनुमान ने सोचा कि जरूर कोई गड़बड़ हुई है, तो विभीषण को बोला कि तुम चेक करो, जाओ अंदर जाकर के क्या हुआ है। असली विभीषण को बोला, तो असली विभीषण अंदर जाकर कहे, वापिस आए, खत्म, सब खत्म, हनुमान तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, अब सब समाप्त हो गया, अब मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। क्यों, क्या हुआ? बोले राम लक्ष्मण है ही नहीं उधर, वो हो असुर उठा करके चला गया किडनैप करके। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं कुछ खत्म नहीं हो रहा, आत्महत्या मत करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो तुम्हारे पास है कि मही रावण है कहाँ, राम लक्ष्मण कहीं कहा, और तुम जानकारी दोगे तब जाके मैं उसको पकड़ के लेके आऊंगा ना, अब मैं हार नहीं मानने वाला, तुम मुझे बताओ मही रावण रहता कहाँ पर है, मैं वहीं पर जाकर उसको पकड़ करके उसको खत्म करके राम लक्ष्मण को वापस लेके आता हूँ। तो एक भक्त जनरली इस प्रकार से होता है कि वो कितनी भी बड़ी मुसीबत, कितनी बड़ी समस्या सामने आ जाए, लेकिन उनको पूरा विश्वास होता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कुछ नहीं होगा, हम भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, भगवान उस मेरे सुरक्षा करेंगे। तो हनुमान जी बड़े स्ट्रिक्ट थे, बड़े चुस्त थे शरणागति में। तुरंत हनुमान ने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे बता दो क्या लोग कहाँ रहता है। बोले कुछ नीदरलैंड के पास कहीं पर, पूरा तो पता नहीं कहाँ पर रहता है, लेकिन सुना है मैंने कि इस तरह का बहुत हजारों की संख्या में बहुत सारे कमल है, उस कमल के बीच में एक बड़ा विशाल कमल होगा, और उस विशाल कमल के भीतर कुछ मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, और उस मंत्र का उच्चारण करने के माध्यम से, वो कमल के माध्यम से तुम मही रावण के लोक तक पहुंच पाओगे, इसे तुम ढूंढो। हनुमान सोचने लगे, हो तो बड़ा रूप लिया, क्योंकि उनको टाइम कम था, और आकाश मार्ग से उड़ने लगे, सब जगह बड़ी तेजी से भागने लगे, चेक करने लगे कहाँ पर मही रावण का छिप सकता है, सब चेक करने गए। और अचानक उन्होंने देखा एक जगह पर बहुत सारे कमल थे, और बड़ा एक कमल भी मिला, तो हो सकता है यही कमल होगा। तो वहां पर पहुंचे, उस कमल के भीतर जाने के लिए छोटा रूप लिया, और कमल के अंदर जाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वहां पर तो लॉक था, अब मंत्र और मंत्र तो आता नहीं है, अब क्या करें, कोई मंत्र या कुछ आवाज करनी थी। तो उन्होंने प्रार्थना की वायुदेव से कि मेरी सहायता कीजिए, मुझे याद नहीं कुछ क्या करने का था। वायुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, यहाँ सक्सन सिस्टम से काम करता है ये, तो यहाँ पर तुम मैं इसका रहस्य जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मार्ग खोल देता हूँ। तो वायुदेव ने वो मार्ग खोल दिया, और सीधे चले गए हनुमान अंदर। हनुमान जाके देखा तो बड़ा सुंदर सरोवर, बड़ा सुंदर बगीचे, कितना सुंदर एंट्री, बोले अंदर कितना और सुंदर होगा। लेकिन बड़ा दुर्ग बना हुआ था सामने, और दुर्ग के ऊपर कुछ 20-25 करोड़ सैनिक खड़े थे। हनुमान ने सोचा कि एक एक करके मारने जाऊंगा तो घंटे निकल जाएंगे, एक साथ ही सब मर जाए, ऐसा कोई उपाय करना पड़ेगा। तो हनुमान वहां सोच ही रहे थे कि कैसे मारे कैसे मारे, तो एक वृक्ष पीछे से बोला कि मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे यहां से उठा करके उन पर फेंकिए। हनुमान ने कहा, तुम कौन हो? तो कहा कि मैं स्वर्ग का एक नागरिक हूं, मैं वहां पर था, और मेरी गलती के कारण एक श्राप मुझे मिला था, और जिस श्राप के कारण मैं बड़ा दुखी था, तो मुझे ये वरदान दिया कि जब तुम मही रावण के आंगन में रहोगे और हनुमान जी वहां पर आएंगे और तुम्हें हथियार के रूप में जब यूज करेंगे तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ऐसा वरदान नारद मुनि ने दिया। इतना विशाल वो कितना वृक्ष इतना विशाल था कि कई मीलों तक वो चौड़ा था। तो हनुमान ने इतना बड़ा वृक्ष जमीन से उखाड़ दिया, और उखाड़ करके सीधा फेंका किले के ऊपर, और सारे योद्धा एक समाप्त हो गए। वो था ब्रिक्स का, जो ब्रिक्स अर्थात तो पत्थर का बना हुआ किला, तो पत्थर का किला तो तोड़ दिया। अब हनुमान अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करे तो आगे देखा कि दूसरा एक किला आ गया। वो किला बहुत बहुत बड़ा था, पीतल का किला था। अब पीतल का किला था तो वहाँ बहुत सारे सैनिक थे आगे। तो हनुमान जी ने अपने हाथ चौड़े किए और सब वो एक एक साथ में ही सबको मारना पसंद करते थे, एक एक करके नहीं तो सब सबको एक साथ खत्म कर दिया। सारे सैनिकों को एक ही झटके में एक ही झापट मारा, सब खत्म। विशाल रूप ले लिया, सबको खत्म कर दिया, उस किले को भी तोड़ दिया। और आगे गए तो आगे और एक किला आया जो कि चांदी जैसा दिखता था। वहां पर भी बहुत सारे सैनिक थे। तो हनुमान ने क्या किया, एकदम बड़ा स्वरूप लिया और सीधा कूदे किले के ऊपर। जैसे ही किले के ऊपर कूदे तो सब सैनिक तो वहीं खत्म हो गए, किला भी खत्म हो गया। आगे गए, बहुत बड़ा जंगल था, और आगे गए तो एक और किला आ गया। आप सोचे कैसी सुरक्षा बनाई थी। और वो जो किला, हर किले के जो सैनिक थे वो जैसे जैसे आगे जाते थे वो तीन गुना बढ़ जाते थे सैनिक की संख्या। तो उसके अंदर और गए तो और किसी कांसे का किला था और वहां उस किले को भी तोड़ दिया। अब सुवर्ण का किला दिखा और सुवर्ण का गेट। तो हनुमान जी ने ये विचार किया कि अवश्य यहीं पर रहता होगा ये महिरावण। और उनको नहीं पता था, एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता थी कि राम लक्ष्मण कहां पर है। तो वहां पर गए छोटा रूप लेकर के देखने के लिए कि यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर तो कोई सैनिक दिख नहीं रहा बाहर, थोड़े गिने चुने सैनिक है तो चेक करना पड़ेगा। तो गेट पे देखा तो गेट पे एक मीटर लगा हुआ था। वो मीटर ऐसा था कि अगर कोई उस गेट तक पहुंचे तो सबसे पहले उसके हृदय में महीरावण के प्रति कितना शत्रुता है, कितना वो हेट करता है महीरावण को, वो चेक करेगा। और वो थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ा बहुत भी अगर कोई होगा महीरावण का शत्रु तो एक कदम भी आगे आएगा तो उस पर सारी सेना टूट पड़ेगी, इसलिए कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान सोचे ये तो गड़बड़ हो गई, अभी इतने सारे सैनिक सेना तो मैं चलो एक साथ संभाल भी लूं, लेकिन साथ में अगर महीरावण भी आ गया तो फिर सारी बाजी बिगड़ जाएगी, क्योंकि उसको तो मारना वो भी एक बड़ी समस्या है कि उसको मारेंगे कैसे महीरावण को। तो सोचे कि यहाँ पर मुझे कुछ लीला प्रकट करनी पड़ेगी, कुछ कुतूहल, कुछ अलग कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा समय वेट किया देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि महीरावण की बहन, वो महीरावण की जो बहन थी, वो बहन के पास महीरावण का जो भांजा था वो, उसका नाम था नीलमेघा। तो बहन का नाम था दुरातंडी। तो दुरातंडी के बेटे को ये वरदान था, आकाशवाणी हुई थी उसके जन्म के समय पे कि जब महीरावण मर जाएगा तो इस महीपुरी का राजा बनेगा महीरावण की बहन का बेटा। तो महीरावण से सहा नहीं गया, मेरी बहन का बेटा वो मेरा राज संभालेगा, मुझे मरना ही नहीं है तो राजा कैसे बनेगा। तो इसलिए उन लोगों ने, जैसे कंस ने उनको जेल में डाल दिया था, वैसे महीरावण ने अपने बहन और उनके पूरे फैमिली को जेल में डाल दिया था। लेकिन उनकी बहन को एक वरदान था। वरदान ये था कि जब कभी भी वो पानी किसी सरोवर से भरेगी और वो पानी जो है वो पूजा के लिए उपयोग होगा तो वो पूजा असफल हो ही नहीं सकती, वो पूजा सफल ही होगी अगर वो पानी भरेगी पूजा के लिए। तो महीरावण ने सोचा कि मैं ये अंतिम यज्ञ कर रहा हूँ काली माता की, सेक्रीफाइस बलि देने के लिए, तो आज ये पूजा के लिए जल के लिए उसको जेल से बाहर निकालो। बोले वो जाएगी पानी भरने के लिए, मैं संपन्न करूंगा। तो वो पानी लेके गई तो सही, लेकिन उसको बांध के रखा था, पांव खुले थे, बाकी हाथ पांव हाथ सब बांध के रखे थे। उसके लिए उसको सरोवर तक जाना पड़ा। अब हनुमान जी ने ये सब घटना देखी कि उसकी बहन को एक किसी स्त्री को बांध करके लाया जा रहा है। तो हनुमान जी ने चेक करने के लिए वहां पर एक पेड़ था, पेड़ के पीछे छुप गए, और वो स्त्री अकेली गई, उनकी बहन अकेली पानी भरने के लिए, और पानी भरते भरते बोली, हाय हाय ये कैसा भाई है मेरा कि राम लक्ष्मण को भी नहीं छोड़ता, राम लक्ष्मण का वध करने का सोच रहा है। और जैसे ही हनुमान ने राम लक्ष्मण का नाम सुना और उसने हनुमान ने देखा कि उसके हाथ में बेड़ियां हैं, उसके पांव में बेड़ियां हैं, तो तुरंत हनुमान वहां पर पहुंचे। हनुमान ने कहा, वेट अ मिनट, तो तुमने क्या कहा, राम लक्ष्मण? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? बोले मैं, बोले तुम रावण हो क्या, रूप बदल के आए हो? बोले नहीं, मैं रामचंद्र का सेवक हूं हनुमान, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को ढूंढ रहा हूं, क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो, मुझे बता सकती हो कि राम लक्ष्मण कहां पर है? तो लेकिन मैं तो मही रावण की बहन हूं, मैं ये कार्य कैसे कर सकती हूँ, यह संभव है? बोले कि तुम तो बेड़ियों में जकड़ी हुई हो, अगर तुम चाहो तो मैं तो मही रावण से तुम्हारा उद्धार करवा सकता हूँ, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा और मही रावण जो है वो खत्म हो जाएगा, और ये सब कार्य मैं आज ही करवा सकता हूँ अगर तुम मेरी सहायता करने को तैयार हो। तो लेकिन तुम मेरी सहायता करोगे कैसे, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तो हनुमान जी ने कहा, तुम ये जल लेके जा रही हो यज्ञ के लिए मही रावण के पास, तो उस जल के साथ आम का एक पत्ता वो भी तुम उसके अंदर रखो पूजा के लिए, और वो आम का पत्ता मैं होऊंगा, आम के पत्ते के रूप में मैं छोटा रूप लेकर के अंदर आ जाऊंगा। बोले कि हनुमान देखो बात तो सही है तुम्हारी कि मैं तुम्हें डाल दूंगी पानी के अंदर, लेकिन गेट के ऊपर तुम्हें जान देनी, यंत्र लगा हुआ है, अगर थोड़ा भी द्वेष होगा मही रावण के प्रति तो सब पता पड़ जाएगा। तो बोले उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभालूंगा, तुम चलो। तो ठीक है चलो। तो लेके गए पानी के अंदर, और जैसे वहां पर वो पानी के निकल गए तो यंत्र तुरंत पता पड़ गया, सैनिक लोग है रुको क्यों, पर हम जानते हैं कि तुम मही रावण को पसंद नहीं करते, हम जानते हैं कि मही रावण से तुम्हारी शत्रुता है क्योंकि उन्होंने तुम्हें बंदी बना दिया है, इसलिए हम थोड़ा बहुत यंत्र दिखा देता है कि तुम्हारे हृदय में घृणा है तुम्हारे भाई के प्रति, लेकिन आज तो कुछ बहुत ज्यादा घृणा दिख रही है, क्या बात है? तो हम ऐसे तो हमें तुम्हें अंदर नहीं जाने देते। तो बोले नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है। बोले आज तो मेरे भाई ने मुझे छोड़ा है तो मेरा कोई घृणा नहीं, मैं तो खुश हूं मेरे भाई से। वो डर गए। बोले नहीं, तो बोले फिर से चेक करो। फिर से चेक किया तो उसका यंत्र ही खराब हो गया, टूट गया यंत्र, क्योंकि इतना घृणा भरा पड़ा था हनुमान जी के हृदय में उसको मारने के लिए। तो तुरंत उन लोगों ने पकड़ लिया कि जरूर इस घड़े के अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ छुपा के ले जा रही हो, कौन है? और जैसे वो पत्ता निकाला, हनुमान सीधे बाहर आ गए। बाहर आकर के वहां पर उपस्थित जितने भी सैनिक थे वो सब सैनिक को हटा, क्योंकि ये तो अंदर प्रवेश कर चुके थे अब, तो उन्होंने सब सैनिकों को हटाया और बात पहुंच गई वहां पर मही रावण के पास। तो मही रावण के पास जब तो उनकी बहन जो थी मही रावण की, उसने कहा कि तुम जाओ आगे, तुम अवश्य विजय प्राप्त कर पाओगे, तुम मार सकोगे उसको, लेकिन ध्यान रखना मही रावण के घर के आगे कुछ 10 अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कैंप बनाए हुए हैं मार्ग में, और ये सारे कैंप में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े योद्धा रहते हैं, तो सारे योद्धाओं को परास्त करने के पश्चात में ही रावण के पास तुम जा सकते हो, तब तक जा नहीं पाओगे उनके पास। तो हनुमान का तुम इनका चिंता मत करो। हनुमान ने क्या किया, इतना विशाल स्वरूप लिया, उन्होंने एक एक साथ पूंछ बढ़ा करके दसों के दसों कैंप के अंदर अपनी पूंछ को जाने दिया और एक साथ दसों के दसों योद्धाओं को खत्म कर दिया, पूरा उठाकर पटक दिया, खत्म कर दिया एक साथ। अब बहिरावण सामने आ गया युद्ध करने के लिए। हे बदमा, हे वानर, तुम यहां तक पहुंच गए, अब तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तो बहिरावण और हनुमान के बीच बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो हनुमान बड़ा जो बहुत शक्तिशाली थे, हनुमान ने क्या किया, हनुमान ने कहा कि कहाँ है राम और लक्ष्मण, लेकिन महिरावण आक्रमण करने पर टूटा हुआ था। हनुमान ने विशाल स्वरूप धारण किया और सीधा गिरे उसके रथ के ऊपर और सीधा रथ के साथ साथ महिरावण को भी कुचल डाला एक साथ, इतना शिला शिला बन गए हनुमान और कुचल डाला। और कुचल गए तो हनुमान ने बोला, जय श्री राम, राम भगवान की जय। तो देखा थोड़ी थोड़ी देर में वही रावण फिर वापिस आ गया। तो हनुमान सोचे अभी ऐसे और एक प्रहार किया और छाती में मुक्का लगाया, कुछ नहीं हुआ, टुकड़े हो गए उसके, फिर जुड़ गया, फिर प्रहार किया, फिर मर गया, फिर जुड़ गया। अब हनुमान ने उसको लॉक कर दिया तो अदृश्य हो गया। तो हनुमान ने सोचा कि ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है, इसको तो कैसे मारे। उनकी बहन को पूछा, भाई इसको क्या किया जाए। वहां देखा आकाश में सिर्फ पर्वत, चांदी का बना हुआ पर्वत हनुमान की ओर आ रहा था। बोले, ये पर्वत नहीं है, वही है। उसकी बहन ने कहा, इसको तुम खत्म कर दो। तो बोले, पर्वत तोड़ डाला हनुमान ने, पर्वत टूट गया, फिर वापिस आ गया। तो अब हनुमान ने जैसा अंतिम प्रहार करने का प्रयास किया, वेल युद्ध उसको हनुमान जी को तो पता था कि इतना भयानक है, क्या करे। पहुंचना था उनको यज्ञशाला तक, तो उन्होंने फिर उसको बांधने का प्रयास किया, लेकिन अब फिर से दृश्य हो गया। तो हनुमान जी ने फिर उनकी बहन को पूछा कि अब क्या हुआ, अब कहाँ चला गया ये। बोले, ये चला गया है यज्ञ करने के लिए, अभी टेम्पररी एक यज्ञ करेगा और बड़ी यज्ञ के द्वारा ऐसी शक्तियां उत्पन्न करेगा और वो शक्तियों से तुम्हें परास्त करेगा। और इतने में तो वो गुफा के अंदर था, वो गुफा में से कृत्या बाहर आ गई, यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुई, बड़ा राक्षस भूत था वो, ब्रह्म राक्षस। तो हनुमान ने सोचा वो अभी इसके साथ युद्ध करना है। तो उनकी बहन ने कहा, इसके साथ युद्ध करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो लक्ष्य लेके आया हुआ है कि उसने बोला है, महिरावण ने कहा है कि जाओ हनुमान को खत्म करो, तो वो आएगा, लेकिन इसके साथ युद्ध करने से अच्छा है तुम उसका यज्ञ जो है उसको ही नष्ट कर दो, खत्म हो गई बात। तो इसकी शक्ति चली जाएगी सब। तो हाँ, ये बात भी ठीक है। तो सीधा घुस गया अंदर, तो भाई रावण रोके, उससे पहले ही जा करके हनुमान जी ने यज्ञ के ऊपर शुशु मार दिया, है तो वानर ही, तो अपवित्र हो गया। जैसे ही एक अपवित्र हो गया, खत्म, कृत्य भी खत्म, और ये भाई रावण जो था वो भयभीत होकर के तुरंत तैयारी में लग गया कि अब मैं इसके साथ युद्ध करने से टाइम बिगाड़ू, इससे अच्छा है राम लक्ष्मण को ही खत्म कर देता हूं, इस तैयारी में लग गया। अब यहां पर हनुमान जी जो है वो रामचंद्र के पास पहले पहुंच गए, ये क्या महिरावण रामचंद्र के पास आए उसके पहले ही पहुंच गए हनुमान। और हनुमान ने जाकर कहा कि हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, प्रणाम किया और ये महिरावण का वध करना बड़ा मुश्किल है, मुझे पता पड़ा कि इस तरह से प्राण छुपे हैं उसके, अब मैं अकेला भला क्या कर पाऊंगा। रामचंद्र का, तुम चिंता मत करो, मैं उसका वध कर दूंगा, लेकिन बाकी का दो काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या? एक तो रावण मही रावण की बहन से वो जो हीरा कहां पर छुपा है उसका पता लक्ष्मण को बता दो, और लक्ष्मण जाके हीरा तोड़ेगा, हीरे को कुचल डालेगा। साथ साथ तुम चले जाओ हिमालय में और वहां पर जाके वो सारे दिए जो है वो बुझा दो, और जब ये बुझाने का समय है उस समय ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के तुम तुरंत इधर आ जाना और मुझे बता देना, तो मैं उस समय उसको छाती में घात कर दूंगा और वहीं खत्म हो जाएगा उसको। तो लक्ष्मण को भेजा उनकी बहन के साथ वो हीरे के पास, लक्ष्मण वॉज रेडी। हनुमान उड़ के गए बड़े तेज से हिमालय में, बड़े बड़े ग्लेशियर्स के पीछे, एक दो तीन ऐसे बड़े बड़े हिम शिलाएं थी, उसके पीछे टोच पर कहीं पांच गुफाएं थी, पांच गुफाओं में से किसी एक गुफा में पांच दिए जल रहे थे। तो हनुमान जी उस गुफा में से एक गुफा में गए, उसमें पांच दिए देखे। हनुमान ने पहला दिया बुझाने का प्रयास किया लेकिन वो नहीं हुआ, दूसरा बुझाने का प्रयास किया तो पहला वापिस हो गया, तीसरा किया तो दूसरा वापिस हो गया। तो हनुमान समझ गया कि ये पांच को एक साथ बुझाना पड़ेगा, अब क्या करेगा। तो फूक लगाई जोर से तो भी नहीं बुझे, जोर से हवा डाली पांचों, फिर भी एक भी पांच में से अगर चार एक साथ हुए और पांचवा थोड़ी देर बाद हुआ, वापिस पांच के पांच ठीक हो जाते थे। तो हनुमान जी ने वायुदेव को याद किया कि हेल्प कीजिए, ये इसको कैसे करने का है। तो हनुमान वायुदेव वहां प्रकट हो गए। वायुदेव ने कहा एक काम करो, ये काम ये पांच दिए का जो है वो मैं कर सकता हूँ इसको आराम से। कैसे? ये दिए तो तब जलते हैं ना कि जब वायु होगा। बोले मैं यहाँ पर वैक्यूम जीरो करा देता हूँ, जीरो ऑक्सीजन, तब तो होगा ही नहीं, फिर जलेगा ही नहीं, सारे एक साथ बुझ जाएंगे। तुम चले जाओ हनुमान रामचंद्र के पास और तुम अपना कार्य करो। हनुमान जी तुरंत पहुंच गए रामचंद्र के पास और यहाँ पर दिए बुझे। उस समय लक्ष्मण ने हीरा तोड़ दिया और यहाँ पर हनुमान जी ने रामचंद्र को इशारा कर दिया कि अब समय आ गया। तो रामचंद्र वो तैयार था और वो मही रावण ने कहा राम को तैयार हो जाओ बलि के लिए, सबसे पहले तुम्हें मुझे प्रणाम करना पड़ेगा। सबसे कहा जाता है रामचंद्र ने भी नाटक किया, रामचंद्र ने कहा अब प्रणाम करना ये क्या होता है, मैं तो भूल गया प्रणाम करना, तुम मुझे सिखाओगे? तो जैसे उसने अपना अस्त्र साइड में रखा और वो झुकने की तैयारी कर रहा, जैसे झुकने के लिए दिखाने के लिए, मही रावण ने सोचा कि मैं दिखाता हूँ कैसे प्रणाम किया जाए, और जैसे झुका तुरंत रामचंद्र ने धनुष बाण से उसके छाते में प्रहार कर दिया और एक साथ तीनों चीज हुई और मही रावण का वध हो गया। अब मही रावण का इस तरह से वध होने के पश्चात मही रावण ऐसी योजना बनाई थी जब मही रावण मरेगा तो सारी महीपुरी खत्म हो जाएगी। तो अचानक बड़ा भूकंप आया और सब नष्ट होने लगा। तो हनुमान ने राम और लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पे बिठा करके वहां से हवा छलांग लगा दी और नील को यह आदेश दे दिया कि तुम फिर से मही रावण का जो नगरी था महीपुरी उसको बना करके वो उनका जो भांजा था उसको राजा बना देना, हम जाते हैं रावण के साथ अंतिम युद्ध करने के लिए। तो रावण के साथ अंतिम युद्ध करने के लिए भगवान रामचंद्र अब वापिस आ गए और ये युद्ध इतना विशाल था, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि महाभारत के युद्ध में तो कैसा था कि शाम के समय पे शंख बजता था, युद्ध विराम हो जाता था और रात्रि के समय पे दोनों योद्धा के सैनिक आपस में एक दूसरे से मिलना है तो मिल सकते थे, लेकिन ये जो युद्ध था वो तो दिन रात 24 घंटे चलता था, कभी रात में भी प्रहार होता था, कभी दिन में भी प्रहार होता था, इस तरह से इसका कोई गारंटी नहीं था कब बंद होता था कब शुरू होता था। तो रात के समय में असुरों की राक्षसों की शक्ति डबल हो जाती थी, तो ये मायावी राक्षस युद्ध करते थे पूरा दिन रात मेहनत करते थे। और रामचंद्र और रावण का ये अंतिम युद्ध जब होने वाला था, रावण को पता पड़ गया कि अब तो मही रावण भी खत्म हो गया, राम खुद ही इधर आ गया, मुझे अब कोई चारा बचा नहीं है, तो मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उसने शिव जी के पास चले गए, शिव जी की सुरक्षा की, शिव जी के पास सुरक्षा मांगी। और युद्ध करने से पहले, सबसे पहले तो जब रावण का वध हुआ, उसके एक दिन पहले रावण का युद्ध राम से बहुत तेज जोर से हुआ था। इतना भयानक युद्ध हुआ था कि रामचंद्र ने रावण को रथ, उसका हथियार और सब कुछ हटा दिया और उसको भेज दिया जीवित छोड़ करके। तो जब वो जीवित छोड़ा तो रामचंद्र ने कहा, एक अजीब बात पहले रावण को, रामचंद्र ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें चाहता तो अभी इसी समय मार देता, लेकिन मैं तुम्हें एक और अवसर देना चाहता हूं। कल युद्ध करने आने से पहले तुम थोड़ा सोचो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि अगर तुम सीता को मुझे वापस दे देते हो अभी भी, तो मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा, और तुम्हें संतोष नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने अभी तुम्हारे सैनिक मरे हैं वो सबको मैं वापस जीवन दान दे दूंगा, यहां तक कि कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सबको जीवन दान दे दूंगा। इससे भी अगर तुम्हें संतोष नहीं होता है तो मैं काल के प्रभाव से सबको ये भुलवा दूंगा कि हमारे बीच में अभी युद्ध भी हुआ था। सब लोग तुम्हारा कीर्तिगान गाएंगे, सब यशोगान करेंगे, और सब सबके सामने मैं ऐसा घोषणा कर दूंगा कि रावण जो है वो रामचंद्र का मित्र थे, केवल तुम सीता को वापस दे दो, जाओ मैं तुम्हें यहां पर छोड़ देता हूं, क्षमा करता हूं, शर्त यह कि सीता को वापस दे दो, अगर तुम कल सीता को वापस नहीं किए तो मुझे तुम्हारा वध करना ही पड़ेगा। तो जब रावण बड़ा दुखी हुआ, एक तो मारना था तो मारा भी नहीं, जिंदा छोड़ दिया, और जिंदा छोड़ के बोलते मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, ये तो पूरा ह्यूमिलेशन है, ये तो कैसे, ऐसा कैसे चल सकता। बड़ा गुस्सा आया उसके हृदय में, लेकिन वो सोच रहा था कि ये कैसा योद्धा है, इसको इसके सहायता, इससे बचने के लिए तो हमें शिव जी से सहायता मांगनी पड़ेगी। तो शिव जी के पास गए, शिव जी का भक्त था वो, और शिव जी के पास गए, शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने उनको एक वरदान दिया था कि जब तुम्हारे प्राण संकट में आएंगे रावण, तो तुम मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा, ऐसा वरदान दिया था। रावण बोले कि अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो शिव जी को रक्षा करने आना ही पड़ेगा। तो रावण ने पूजा की, मंत्र उच्चारण किए, स्तुति की, शिव जी वहां पर प्रकट हुए। रावण तुम मुझे बुला रहे हो, क्या बात है? कि वो दशरथ का बेटा राम, वो इधर आ गया है, मुझ पर प्रहार कर रहा है, अब तो कुछ बचा नहीं, एकनाथ को खत्म कर दिया, कुंभकर्ण को मार डाला, सारे सेना सैनिक मेरे मर गए, सब बड़े बड़े नेता मर गए, अब मैं अकेला बचाऊं, आपने वचन दिया था कि जब मेरे प्राण संकट में आएंगे तो आप मेरी प्राण रक्षा करेंगे, तो आप कृपा करके मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो शिवजी ने कहा अवश्य करूंगा, तुम्हारे प्राण की रक्षा करना ऐसा मेरा वचन था, तो मैं अवश्य रखूंगा। रावण खुश हो गए, हाँ यस, ये हुई ना बात कि शिव जी मेरी रक्षा करेंगे। तो शिव जी ने कहा ठीक है, तो मैं जैसे कहता हूं वैसा करो, हाँ बताइए, सबसे पहले सीता को वापस दे दो। व्हाट, सीता को वापस दे दो? बोली ये इसके लिए मैं थोड़ी आपकी पूजा की, ये तो धोखा है, ये तो चीटिंग है। और शिवजी ने कहा मैंने कौन सी, बोले तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी प्राण रक्षा करूंगा। तो शिवजी ने कहा तो मैं तो मेरा वचन निभा रहा हूं, मैं तुम्हारी प्राण रक्षा तो कर रहा हूं। बोली ये तो कोई प्राण रक्षा नहीं हुई, तुम जाओ राम के साथ युद्ध करो। शिव जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा यह वचन दिया था कि तुम्हारी प्राण रक्षा करने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ेगा, मैंने तो केवल तुम्हें प्राण रक्षा करने का वचन दिया था, और प्राण रक्षा करने के लिए मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी प्राण रक्षा एकदम आसान है, सीता को वापिस दे तो तुम्हारे प्राण सुरक्षित हो जाएंगे। हनुमान रावण बड़ा क्रोध में आ गया और सोचे कि ये तो पूरा नाइंसाफी, ये तो अन्याय हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, ये तो बहुत जगले दिमाग, मैं तो पूरा इतना बड़ा तपस्या किया था, सब पानी में चला गया। वो शिव जी के सामने शिव जी को भी बोलने लगा, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे कारण मैं जिंदा हूं, मैं खुद लड़ सकता हूँ राम के साथ, तुम्हारे किसी की आवश्यकता नहीं, चले जाओ तुम यहां से। शिव जी कहा ठीक है, अभी मैं कहता हूँ रावण सुधर जाओ, सीता को वापस दे दो तो तुम्हारे प्राण की रक्षा हो जाएगी। लेकिन रावण बोले नहीं, वो तो कभी नहीं होगा। तो ठीक है, तुम अपने मृत्यु को अपने हाथ स्वीकार करो। तो वहां से शिव जी अप्रसन्न होकर चले गए और रावण चले निकल गए वहां युद्ध करने के लिए। उसने भी उसके पास बहुत सारी माया शक्तियां थी, हम तो आपको केवल समरी बता रहे हैं, अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो इसमें विस्तार से बताया कैसा कैसा युद्ध हुआ था राम रावण के बीच में। और रामचंद्र को अगस्त्य मुनि ने स्पेशल पूजा सिखाई थी, स्पेशल पूजा समृदय कोई स्पेशल मंत्र सूर्य देव की उपासना का, तो वो मंत्र का उच्चारण किया और एक अमोग मंत्र दिया था कि जिस मंत्र का उच्चारण करने से रावण का वध हो सकता है, ब्रह्मास्त्र का संधान करना है, उस मंत्र का उच्चारण करना है और प्रहार करना है। तो ये सब और एक स्पेशल अगस्त्य मुनि ने एक स्पेशल बाण दिया था बहुत सालों पहले राम को, कहा था कि ये बाण ऐसा अमोघ है कि जब किसी के ऊपर प्रहार करोगे ब्रह्मास्त्र के साथ इसको लगाना पड़ेगा और ये जब छोड़ोगे तो कितना भी बड़ा असुर होगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये सब रामचंद्र के पास था। इंद्रदेव ने अपना सारथी मातली भेजा था उनकी सेवा करने के लिए और रावण का रामचंद्र का दोनों का बड़ा युद्ध हुआ। एक बार तो ऐसा हुआ कि हनुमान वानर सेना इन सब ने मिलकर शिलाओं और वृक्षों का इतना बड़ा पूरा बारिश किया, बहुत सारे तीर छोड़े, बाण लगाए बहुत सारे, तो एक समय के लिए रावण के हाथ में से धनुष भी गिर गया और उसको इतनी चोट आई कि वो सीधा बेहोश होकर के गिरा अपने रथ में। तो उनका जो सारथी था वो उनको वहां से भगा करके ले गया। बाद में जब रावण को होश आया तो उसने बहुत डांटा अपने सारथी को कि दुष्ट, तुम मेरा अपमान करवाना चाहते हो, मुझे रणभूमि से भगा करके लेके आए। और फिर बाद में जब रावण राम का युद्ध हुआ अंत में, तो यही अवसर था कि अब विभीषण ने सहायता की, मातली ने सहायता की, सबने रामचंद्र को कहा, देवताओं ने सहायता की, सारे देवता आ गए, सबने अपने अपने सेवा के लिए प्रस्तुत किए कि अब रावण का वध अवश्य है। तो रामचंद्र ने राम के पास इतना बड़ा धनुष था कि उनकी हाइट से भी बड़ा था। तो जैसे ही रामचंद्र ने संधान किया धनुष के ऊपर और ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और मंत्र का उच्चारण किया और सब देवताओं मिलकर के, ऐसा मानो कि जैसे ब्रह्मास्त्र नहीं सारा ब्रह्मांड एकजुट होकर के रावण का वध कर रहा है। तो रामचंद्र ने ऐसा प्रहार किया, ऐसे कुछ वर्णन ऐसा भी है कि वो रामचंद्र ने पहले एक एक बार मारने का प्रयास किया लेकिन उसके पास 10 अलग अलग शीर थे और उसका प्राण जो था वो भी नाभि में छुपा हुआ था, कुछ कहते हैं कि उनके हृदय में था। तो इस तरह से अलग अलग स्थान पे प्रहार किया लेकिन इस बार रामचंद्र ने मंत्र का उच्चारण किया और सीधा मारा रावण को और रावण तुरंत आकाश में से धराशायी होकर के जमीन पे आ गिरा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से रावण का वध हुआ भगवान रामचंद्र ने। और बाद में तो काफी सारी कथाएं है लेकिन हमने आप सोचा था कि आपके साथ रामनवमी के पहले पहले रामायण का अंतिम जो भाग होते हैं वो सब की चर्चा करेंगे। और रामनवमी के दिन हम सोच रहे थे कि आपके साथ रामचंद्र के जन्म के विषय में बात करेंगे, तो कल रामचंद्र के जन्म के विषय में बात अवश्य करेंगे। रावण का वध होने के पश्चात जब लोगों ने कहा कि आगे का क्या किया जाए तो रामचंद्र ने कहा कि इनका अग्नि संस्कार करो, इन सब का श्राद्ध सेरेमनी वगैरह सब जो कर रहे करो, कोई जाओ वहां पर जाकर के सीता को बता दो कि रावण का वध हो चुका है, अब वो आ सकती है। तो जब रावण हनुमान जी गए उनको लेने के लिए, सीता वहां पर वापिस आई, तो ऐसा कई जगह बताया गया है कि रामचंद्र ने कहा, रामचंद्र और एक लीला प्रस्तुत की, रामचंद्र ने कहा कि हनुमान जी ने आके कहा कि सीता माता आ गई है, आप वो आपके दर्शन चाहते हैं। रामचंद्र बोल रहे उनको बोल दो कि मैंने मेरा काम कर दिया, उसका रावण से मुक्ति करवा दिया, अब उसको जहां चढ़ाए चली जाए। तो सब लोग आश्चर्य में हो गए, विभीषण की ओर देखा, लक्ष्मण ये सब क्या हो रहा है। बोले इतना सेतु बनाया, युद्ध किया, इतने बड़े बड़े पराक्रम किए, सबको खत्म कर दिया, आप ये क्या बोल दिया भगवान ने। तो विभीषण के पास आए, बोले हाँ मैं भी यही सुना है। लक्ष्मण के पास आए, बोले हाँ मैंने भी यही सुना है। तो सब लोग मिलकर गए रामचंद्र के पास कि आपने क्या आदेश दिया था। बोले कि आपको पता नहीं पड़ा, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि उस देवी को बोलो कि मैंने उनकी सुरक्षा कर ली है, अब वो जहां पर जाना चाहे चली जाए, और तुमने अपना काम किया, तुम सब किसके अंदर जाओ और मैं जाता हूं अयोध्या। तो सब लोग दुखी दुखी हो गए, तो इसका कुछ तो उपाय होना चाहिए, कुछ तो उपाय होना चाहिए, क्या। तो जाओ सीता को संदेश दो, संदेश सीता को संदेश दिया कि ऐसा कह रहे प्रभु तो क्या करे। तो प्रभु को बोला, सीता ने उत्तर दिया कि आप उनको पूछो कि मेरे तो स्वामी आप है, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊंगी। तो रामचंद्र के पास है, रामचंद्र ने कहा कि मुझे क्यों पूछ रहे हो, उनको जहां जाना जाए उनको ही पूछो कि वो कहां जाना चाहती है। तो वहां पर पूछा, उनको कहा कि मेरे तो अब स्वामी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तो मेरा तो एक ही उपाय है कि मुझे आत्मा समर्पण करना पड़ेगा अग्नि को, मैं अपना शरीर स्वाहा कर दूंगी। ठीक है, वो अच्छा आइडिया है। तो सब लोग जो सोच में पड़ गए हैं, माता सीता को अग्नि से जाना पड़ेगा, क्यों। लेकिन तो वहां सब लोग आ गए, सबने कहा कि ये तो अन्याय है, ऐसा क्यों है। फिर ब्रह्मा जी स्वयं आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप लीला कीजिए, लेकिन ऐसी लीला हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये सब क्या हो रहा है। ब्रह्मा जी खुद भी चौंक गए, बोले ये सब हो क्या रहा है। बोले इतना सीक्रेटली काम किया था रामचंद्र भगवान ने, ब्रह्मा जी तक को भी नहीं पता था कि ये वास्तव में मामला क्या है। ये तो ब्रह्मा जी भी चौंक गए, बोले ये तो आपके पता नहीं। बोले हाँ, लेकिन ये देवी को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। बोले बात क्या है, कुछ बताइए, तुम देखो क्या हो रहा है। तो हनुमान लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम अग्नि का पूरा मार्ग बनाओ, अग्नि का पूरा चिता बनाओ। सीता अग्नि में प्रवेश किया और सबके सामने देखा कि वहां पर स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, असली सीता को लेकर के आए। और वो सीता, असली जो सीता थी, वो रामचंद्र के पास आई। रामचंद्र ने कहा कि भाई तुम लोग खामखा इतने परेशान हो गए थे, इतनी सीधी सी बात थी कि वो देवी मेरी पत्नी नहीं थी, तो मैं उसको कैसे स्वीकार करूं। मेरी पत्नी तो अग्निदेव के पास थी, लेकिन वो स्त्री तो आपके शरणागत थी, और शरणागत क्षत्रिय का तो ये लक्षण है कि शरणागत स्त्री जो होती है, जो पत्नी भाव से आती है, तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो रामचंद्र ने कहा कि चलो वो बात भी मैं मान लेता हूं, लेकिन मैंने तो व्रत लिया हुआ है कि मैं इस अवतार में, इस लीला में केवल एक ही बार लक्ष्मी से शादी करूंगा, एक ही पत्नी स्वीकार करूंगा, तो मैं भला दूसरी शादी कैसे कर सकता था। और मेरी पत्नी जो है वो तो अग्निदेव की सुरक्षा में थी, वो कैसे हुआ। वो ये लक्ष्मण को पूछो वो कैसे हुआ, लक्ष्मण ने सब किया है, लक्ष्मण की सेवा है इसके पीछे। और वो कैसे कि जब रावण आया था हरण करने के लिए, तो लक्ष्मण ने अग्नि को सुरक्षा के लिए बोला था कि तुम यहां पर सुरक्षा करो। कुछ लोग कहते लक्ष्मण रेखा बनाई थी, लेकिन यहां पर अग्नि को साक्षात हाजिर किया था कि तुम उपस्थित रहो और रावण सीता की रक्षा करो। अब ये तो बड़ी लंबी कथा है कैसे रावण ने अपहरण किया था सीता का, लेकिन जब रावण सीता को स्पर्श करने वाला ही था उस समय अग्निदेव तुरंत नकली सीता रावण के हाथ में दे दी और असली सीता तो उनको छुपा करके चले गए अपने लोग में अग्निदेव वहां पर, और ये नकली सीता रावण को दे दी। इसके पीछे भी कहानी है कि उसको वो भी एक अप्सरा थी पूर्व जन्म में जो कि नारायण की सेवा करती थी और तपस्या करती थी, रावण ने उनके साथ बल प्रयोग किया था और उसने ऐसा वरदान लिया था कि रावण का वध मेरे कारण होगा। तो बहुत बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई है इसके पीछे। तो यही कथा का पूरा एक्चुअली ये वर्णन रामायण में पूरा डिटेल में नहीं आता है, ये वर्णन आता है कूर्म पुराण में है। तो जब चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र में गए थे तो वहां पर एक ब्राह्मण था जो कि रामचंद्र का भक्त था और इतना ऐसा भक्त था कि वो निरंतर राम के चिंतन में निरंतर रहता था, रामचंद्र के विषय में निरंतर सोचता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हुए हैं, वहां आए हैं, तो उन्होंने उनको आह्वान दिया भोजन के लिए, तुम भोजन के लिए आइए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राम ही है, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए उनके घर पे और वहां पर भोजन के लिए गए तो देखा तो वो तो भाई बैठे हुए घर में, कुछ कुकिंग हुआ नहीं है, कहीं खुशबू भी नहीं आ रही कि यहाँ पर कुछ कुकिंग हुआ हो। वो तो आराम से बैठे हुए और महाप्रभु जाकर के कहे कि आपने मुझे भोजन के लिए बुलाया था तो आपने, बोले हाँ आइए आप बैठिए, भोजन के लिए मैंने बुलाया आपको, लेकिन अभी लक्ष्मण गया है लकड़ियां लेने के लिए। अब जब लक्ष्मण लकड़ी लेकर आएंगे फिर माता सीता उसमें रसोई बनाएगी, तब जाके रामचंद्र, तब रामचंद्र को भोग लगेगा ना, तो उसके पहले तो मैं आपको भोजन कैसे दे सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले थे ओ अच्छा, बाद में उसको बाह्य ज्ञान हुआ, अरे ये मैं क्या बोल दिया, वो अपने पूरे बाह्य चेतना में वापिस आ गया। वो तो निरंतर रामलीला का चिंतन कर रहे, अब सोचो कि इतना चिंतन करते करते कोई भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं तो स्वयं जिनका चिंतन कर रहे रामचंद्र, जिनका वो चिंतन कर रहे जिनका वो भक्त था, वो स्वयं भगवान रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे सामने। तो अगर निरंतर आप सोचिए कि आप निरंतर कृष्ण का चिंतन करेंगे तो कृष्ण को भी निरंतर आपका चिंतन करने के लिए बाध्य बन जाना पड़ेगा। आप सोचिए कि अगर आप निरंतर चिंतन कृष्ण का करते हैं तो कृष्ण आपके माध्यम से वो हर सेवा करवा सकते हैं कि जो उनको प्रिय है, और अगर आपकी इच्छा है कि उनके इंस्ट्रूमेंट बनकर के आप सेवा करना चाहते हैं, उनकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, बद्ध जीव का उद्धार करना चाहते हैं, तो भगवान आपको सब सुविधा देंगे, सब शक्ति देंगे, सब आशीर्वाद देंगे, आपको सफल भी बनाएंगे। तो जब कूर्म ब्राह्मण जो वहां था वो उसको पता पड़ा कि ये तो गलत हो गया, तुरंत तुरंत उसने कुकिंग किया, भोग लगाया भगवान को, भोजन जब चैतन्य महाप्रभु को, जब भोजन सब समाप्त हो गया उसके पश्चात इन्होंने उनके चरण में बैठ करके ब्राह्मण ने पूछा महाप्रभु को कि मैं रामचंद्र की सेवा करता हूँ, उनका मैं एक तुच्छ दास हूँ, लेकिन मेरे मन एक चिंता निरंतर सता रही है। महाप्रभु कहा क्या चिंता है तुम्हारी, कि वो दुष्ट रावण माता सीता को स्पर्श कैसे कर पाया, इतनी पवित्र इतनी साक्षात लक्ष्मी उसको उसके अपवित्र हाथों ने स्पर्श कैसे किया, ये मैं समझ नहीं पा रहा। तब महाप्रभु ने उस कूर्म ब्राह्मण कूर्म पुराण का वो बताया जो कथा हमने आपको बताया अभी कि देखो असली में जो असल सीता थी वो तो वहां थी ही नहीं, जो माया सीता थी उसका हरण हुआ था और वही रही थी रावण के पास। तो इस तरह से ये कूर्म ब्राह्मण कूर्म पुराण जो है उसमें ये कथा का विस्तार से बना है। उसके बाद फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान होता है रामचंद्र का और वहाँ पर उनका राज्य अभिषेक होता है और आगे कथा फिर लव कुश की भी कथा है, वो सब जब अवसर कभी मिलेगा आप सब भक्तों से चर्चा करेंगे। सो अब यहाँ पर हम समाप्त करते हैं युद्धकांड और कल प्रयास करेंगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे कृष्ण राम जन्म के विषय में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।